कल कुछ प्रेमियों को मोबाइल पर एक वाणी भेजी गई थी, पर उन लोगों ने मनन किया होगा, लेकिन वाणी ये कठिन है, इसलिए इसकी कुछ पंक्तियों पर विचार रखा जा रहा है। वाणी में आता है, पांच तत्व गुण तीन का खेला, माया भरब ने रचया मेला। तत्व विकार कर्म प्रगटाए, कर्म का भुगता आप बन जाए। पांच तत्व गुण तीन का खेला, माया भ्रम ने रचया मेला। अब ये बात समझ नहीं आती, ये सारा खेल पांच तत्व तीन गुण का कैसे है, और इसको माया क्यों कहा गया, और वो माया भी नहीं, माया भ्रम, ये केवल भ्रम है। ये सारी रचना जो है, जो हमारे अनुभव में आ रही है, ये माया भ्रम कहा गया। तो इसको आप यदि अपने अनुभव के आधार पर समझना चाहें, तो हमारा रात्रि की निद्रा का सबका अनुभव पता है, जिस समय हम सोने की तैयारी करते हैं तो हमको पता है कि मन में संकल्प उठ रहे हैं, नींद नहीं आ रही, लेकिन कुछ देर पश्चात जब बाहर का अनुभव बंद हो जाता है, लेकिन मन का संकल्प का उठना बंद नहीं हुआ, तो उस समय एक रचना रची जाती है प्रकृति के द्वारा, इसको स्वप्न की रचना कहते हैं। हमको स्वप्न दिखाई पड़ना शुरू होता है, जो मेरे ही मन का संकल्प है, स्थूल रूप में प्रकट हो रहा है। तो स्वप्न हम बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेते हैं कि मन की कल्पना है, इसकी वास्तविकता नहीं, जबकि मेरा अनुभव है, मैं ही देख रहा हूं, मैं ही जान रहा हूं, मुझे याद भी है मैंने क्या देखा। कि इसके बाद जब मैं जागृत हालत में आता हूं, तब जागृत को मैं सत्य समझता हूं, ये वास्तव में सत्य है, और जो स्वप्न की रचना है वो नाशवान है। इस निर्णय को करने में मुझको कुछ देर नहीं लगती, कोई शास्त्र नहीं पढ़ने पड़ते, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मन का संकल्प भी खत्म हो जाता है, नींद गहरी हो जाती है। जब नींद गहरी होती है, स्वप्न की रचना वहां नहीं होती, उस गहरी नींद में पूरी मेरा पूरा ब्रेन, पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। जो दिन भर की थकान है, दिन भर का मेंटल प्रेशर है, वो सब रिलीज हो जाता है, निकल जाता है वो, और जब सुबह सोकर उठता हूँ तो मुझे वो बड़ी ताजगी, बड़ा आराम सा, एक बड़ी खुशी से लगती है कि रात बड़ी बढ़िया नींद है। तो इसका मतलब मेरी ही अपनी एक ऐसी स्थिति है जहां मन का संकल्प नहीं है, बस मात्र मन का संकल्प नहीं है वहां, उस स्थिति में पहुंचकर मुझको मेरी पूरा शरीर, मेरा पूरा ब्रेन, सारा का सारा कैसा रिलैक्स हो जाता है, अर्थात मुझको शांति मिल जाती है। और सुबह उठकर फिर मैं इच्छा करता हूं कि आज रात को भी ऐसी बढ़िया नींद आ जाए तो बड़ा चैन मिले। लेकिन महर्षि रमण कहते हैं, तुझको पता नहीं है जो स्थिति तेरी गहरी नींद के समय है, जिसका वर्णन तो नहीं कर सकता, उसके इफेक्ट को तो तू जानता है, उसका असर क्या हुआ मेरे ऊपर, मेरे शरीर ऊपर, लेकिन उस अनुभव को तो बयान नहीं कर सकता कि गहरी नींद होती कैसे। बोले यही गहरी नींद यदि तुझको होश में रहते हुए आ जाए, उसको समाधि कह दे। आपसे कहा जाए कि गहरी नींद आई, उसका वर्णन करो, नहीं कर सकते आप, लेकिन योगी से बोलो जब समाधि से वो जागता है या नीचे आता है, जैसे महाराज जी के सामने शिष्य बैठे होते थे, महाराज जी गहरी समाधि से जब बाहर का होश आता था, प्रेमी से कहते थे प्रेमी कोई प्रश्न करो, यदि किसी ने प्रश्न नहीं किया दो चार मिनट के बाद वो फिर समाधि में चले जाते। तो समाधि उनका निज स्वरूप था, सम स्थिति थी उनकी, इसलिए उनको कहते हैं कि वो आत्मलीन थे या सहज समाधि में थे। हमारी जागृत हालत क्या है, ये सहज हमारी स्थिति। तो महाराज जी की वो समाधि सहज स्थिति थी, इसमें शांति अलावा कुछ है ही नहीं। तो वो जो समाधि है, जैसे आप नींद में जा रहे हो जब, तो पहले आपका संसार गायब होता है लेकिन मन के संकल्प आपके बने रहते हैं, जो स्वप्न की रचना कर लेते हैं उसको भी आप जानते हो, उसके आगे आप गहरी नींद की अवधि नहीं जानते। लेकिन सतपुरुष जब बाहर के अनुभव को छोड़कर अंदर समाधि में जाता है तो उसको पता होता है कि कैसे कैसे इंद्रियों का मन का व्यापार बंद हुआ और उसके साथ साथ क्या अनुभव हुआ, और उस अनुभव में पूरा संसार, मेरा ही मन, मेरी इंद्रियां, सब एक दूसरे में मर्ज होती चली जा रही है। मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं, एक दूसरे में लीन होती चली जा रही है। और लीन होते होते वो समाधि की स्थिति आ गई, वहां केवल आनंद। इसीलिए जब वहां से वो वापस आता है तो उस वापसी के सिस्टम को भी जानता है और उस समाधि का जो आनंद है उसको भी वो जानता है। इसीलिए वो कहता है कि सारी जिंदगी कितने जन्म मनुष्य जो है संसार में भटकता रहता है लेकिन उसको अपने आनंद का पता ही नहीं। मनुष्य के शरीर के अंदर ही आनंद का सागर उमड़ रहा है, मुझे उसका पता ही कुछ नहीं। तो इसीलिए जीवन में यदि मैंने गुरु धारण नहीं किया, गुरु का मतलब इसका टाइटल गुरु है वो नहीं, जो इस स्थिति का मालिक है वो गुरु होता है। ये बातें जानने वाले को भी गुरु नहीं कहते, कोई भी पढ़कर सुना सकता है, लेकिन जो उसको जानता है इसमें स्थित है वो गुरु होता है। इसीलिए ये वाणी सारी थ्योरी नहीं है, ये अनुभवी वाणी है। उस स्थिति के अनुभव प्राप्त करने के बाद ये वाणी उसी स्रोत से अवतरित हुई, जिस स्रोत में सतपुरुष समाधि में स्थित होता है उस स्थिति में ही ये वाणी बाहर आ रही है, जहां बुद्धि भी साइलेंट है, मन भी साइलेंट है, दृश्य भी साइलेंट है, लेकिन वाणी आ रही है। इसका मतलब वो ऐसी स्थिति नहीं है कि जैसे हम सो गए, वो ऐसी स्थिति है जहां पूरे ब्रह्मांड का जीव खुद मालिक है। तो ये उस स्थिति से वाणी आई है, वो कह रही है पांच तत्व गुण तीन का खेला माया भ्रम ने रचया मेला। वहां से ये पांच तत्व और तीन गुण फिर प्रकट हो रहे हैं। जब समाधि छूट के नीचे आ रहा है वो योगी, तो ये चीजें प्रकट हो रही है उसके आगे। तो वो जो एक शब्द आता है उपनिषद में निर्विकल्प समाधि, तो निर्विकल्प समाधि का जहां मन का संकल्प उदय होना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। तो उस निर्विकल्प समाधि से जब नीचे आता है कोई योगी, उस स्थिति को ही पुराण में ब्रह्मा कहा गया, ब्रह्म नहीं ब्रह्मा। कहते हैं जगत का रचयिता कौन है, ब्रह्मा। ब्रह्मा से संसार उदय हुआ, उस स्थिति योगी की उस स्थिति को ही ब्रह्मा कहा जाता है। ये मेरी अपनी स्थिति है, महाराज जी की अपनी स्थिति है। तो वहां से नीचे क्या होता है कि वहां पर ये तीन गुण जो है, जिसको हम सतोगुण रजोगुण तमोगुण कहते हैं, नहीं गुण गुणों में वर्त रहे हैं, गीता में ऐसा आता है। तो रचना उन तीन गुणों से प्रकट हुई है, तो इसीलिए सबसे पहले ये तीन गुण वहां पर जो बैलेंस्ड थे अर्थात सम थे, अब वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, या यूं कहिए कि आप एक्टिव हो जाते हैं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण तो मूल प्रकृति जो है वो, जिसको गीता में अव्यक्त कहा गया, वहां से ये तीन गुण फिर प्रकट होते हैं। जब ये तीन गुण प्रकट होते हैं तो आप सोच लीजिए, कि गुणों का जो परिवर्तन है वही आपके कर्मों को पैदा करता है, वही गुणों का परिवर्तन आपके अंदर कर्तापन पैदा करता है, क्योंकि उस स्थिति में ही आप कर्म करने लायक बन सकते हैं। तो वहां पर जब तीन गुण प्रकट होते हैं तो तीन गुण के साथ फिर क्या होता है, अगला क्या है, पांच तत्व प्रकट हो जाते हैं, उसी में से प्रकट हो रहे हैं। सत्ता वही है, उसी सत्ता से तीन गुण प्रकट हो रहे हैं, उसी सत्ता से पांच तत्व प्रकट हो रहे हैं। तो पांच तत्व वहां पर सूक्ष्म रूप में प्रकट होते हैं, ये स्थूल तो हमको बाद में दिखाई पड़ता है, इसको तन्मात्रा बोलते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो ये पांच तन्मात्रा हैं, इन्हीं से ये पांच स्थूल तत्व प्रकट होते हैं, जिसको पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो अब बताइए वो शांति का सागर जो मेरी स्थिति है वहां से ये तीन गुण और ये पांच तत्व प्रकट। तो वो कह रहे हैं कि पांच तत्व गुण तीन का खेला माया भ्रम ने रचया मेरा, और ये जो प्रकटीकरण है ये क्या है, माया भ्रम है। उसी प्रकार माया भ्रम है जिस प्रकार रात्रि को जब मैं सोता हूं और मेरी नींद हल्की होती है, बाहर का होश नहीं है, शरीर का होश नहीं है, मच्छर भी काट लिया मुझे पता नहीं है मच्छर ने काटा, लेकिन मन का संकल्प अभी शांत नहीं हुआ जिसके कारण स्वप्न की रचना हो गई। तो आप क्या कहते हो जागने के बाद, वो तो भ्रम था, स्वप्न था, मन का संकल्प था, बड़े आराम से कह देते हो, वो सत्य था वास्तविकता थी यह कहते हो कभी आप? इसीलिए जब समाधि से यह नीचे आ रहा है योगी, सब कुछ नीचे आ रहा है, तब ये जब पांच तत्व तीन गुण का खेल प्रकट हो रहा है तो उसको कोई भ्रम नहीं है। तो वो कह रहा है कि माया भ्रम ने रचा, ये सारा जो मेला रचा गया ये माया भ्रम है। अब बताइए सारी जिंदगी स्वप्न देखते हो आप, लेकिन सारी जिंदगी बीत गई, आप कभी स्वप्न से प्रेम नहीं करते, आप उससे प्रेम करते हो, वो चाहते हो कि स्वप्न की रचना ना हो, मुझे गहरी नींद सीधी आ जाए, ये आपको ना इच्छा बनी रहती है हमेशा कि मुझे गहरी नींद आ जाए, ये स्वप्न की रचना गायब हो जाए। तो सत्पुरुष कह रहे हैं इसी काम को करने के लिए तो तुझको मानव जन्म दिया गया, इस विज्ञान पे तेरा विश्वास आ जाए, इसको सीखने के लिए तुझको तेरे लिए अवतार भेजा गया, गुरु भेजा गया, ये वाणी भेजी गई। तो यदि मैं जैसा वाणी वर्णन कर रही है वैसी यदि मैं इससे शिक्षा ग्रहण नहीं करता, अपने संसार की कल्पनाएं थोपे रहता हूं अपने बुद्धि के ऊपर, तो मेरा जिंदगी खत्म हो जाती। तो अभी जो वाणी उच्चारण कर रहे थे वहां यही तो कहा गया कि अनंत कर्म है और कर्म का फल है, उसमें तू निरंतर बेचैन रहता है, तेरे कितने जन्म हो चुके, हर जन्म में यही करता रहता है, परेशान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, लीला खत्म हो जाए, फिर नया जन्म हो जाता है, चलो मर जा तभी छुट्टी हो जाए, तू परमानेंट नहीं मरता, केवल तेरा शरीर परिवर्तन होता, तेरे कर्म का फल भी नहीं मिटता, वो भी तेरा भविष्य में प्राप्त के रूप में मिल जाता है भोगने के। तो फिर पुरुषार्थ करने के लिए मानव जन्म मिला, तो कौन सा पुरुषार्थ है? वो यही पुरुषार्थ है कि मन के संकल्प से मुझको कैसे छुटकारा मिला। तो अगली लाइन में कह रहे हैं कि तत्व विकार कर्म प्रगटाए, कर्म का भुगता आप बन जाए। तो पांच तत्व तीन गुण का जो खेल हुआ, ये क्या हुआ, पांच तत्व के पांच विकार हैं, याद रखिए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनके पांच विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, कई बार सत्संगों में इसका विज्ञान आ चुका है। तो पांच तत्व के जो पांच विकार हैं, तो विकार में आपका मन दुखी रहेगा, बेचैन रहेगा या खुश रहेगा। तीन गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और आप जानते हैं जिसकी तमोगुणी स्वभाव होता है वो पापी होता है, उसके जीवन से दूसरों को दुख पहुंचता है, घर वालों को भी दुख पहुंचता है। जो रजोगुणी होता है वो बड़ा माया इकट्ठी करने की कोशिश करता है, बड़े भोग विलास ज्यादा करने की कोशिश करता है, उसको पता ही नहीं ये सारे के सारे जो हैं तुझको बिगाड़ देते, तेरे स्वभाव को बदल देते, ये तो रजोगुणी स्वभाव है ना। तो समतावास में लिखा हुआ है कि रजोगुण तमोगुण में बदल जाता है। जो जैसे जैसे घोर रजोगुणी व्यक्ति होगा, जिसको डेवलपमेंट कहता है, वो उसको पता ही नहीं चला लगातार पतन हो रहा है। तेरे स्वभाव में तमोगुण आ जाएगा, अब तेरी डेथ होती है तो अगला जन्म तेरा तमोगुणी स्वभाव के अनुसार मिलेगा तुझे, जिसको हम पशु योनि कहते हैं, जिसको बुद्धि की जरूरत ही नहीं हो। तमोगुणी व्यक्ति जिसने इस जन्म में पाप ही पाप किए, दूसरों को कष्ट पहुंचाया, उसको मानव जन्म क्यों मिलना चाहिए? आप भी चाहो कि ये मरे परमानेंट मर जाए, ज्यादा अच्छा। ऐसे व्यक्ति समाज में पैदा ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझको होश ही नहीं है कि विज्ञान तो ये कह रहा है जो घोर रजोगुणी है उसका स्वभाव तमोगुण में ऑटोमेटिकली बदल जाता है, उसको पता ही नहीं होता। इसका मतलब माया को हम भोग नहीं सकते। माया के प्रति मैंने जागरूक रहना होता है। मनुष्य जन्म जिस काम के लिए मिला है उसको मैंने जानना होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि तत्व विकार कर्म प्रगटाए, कर्म का भुगता आप बन। तो ये पांच तत्व हैं जिसके पांच विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो यदि आपका स्वभाव सतोगुण लेके आए हो तो क्या करोगे? आप पाप कर्म नहीं करोगे, पुण्य कर्म करोगे। कर्म को भी पुण्य कर्म, किसी को सुख देने का कर्म कहिए या परोपकारी कर्म करने की बात कहिए, तो आप से सतोगुण की तरफ जाओगे आप। लेकिन गुणों में परिवर्तन ऑटोमेटिकली होता है। कर्म का आप यदि शौक बढ़ गया, वहां पर अपने अंदर की भक्ति नहीं करी आपने, सिमरन नहीं किया, तो वही आपका जो सेवा कर्म है वो पुण्य कर्म तो बन जाएगा, उसका भविष्य में फल सुखरूप होगा, लेकिन तेरा स्वभाव बिगड़ जाएगा। तुझको होश ही नहीं है। यदि तूने ईश्वर प्राप्ति की कोशिश नहीं करी हो तो यही कर्म करता रहा, परोपकारी कर्म करता रहा, यही तुझको रजोगुणी बना देगा। तुझको इस बात का पता नहीं। इसीलिए गीता कह रही है गुण गुणों में वर्त रहे हैं, गुणों में ही चक्कर काटता रहेगा सैकड़ों जन्मों तक। शांति गुणों से ऊपर है, इसलिए ईश्वर को निर्गुण कहा जाता है। तो ईश्वर से मिलना है तुझे निर्गुण होना पड़ेगा। गुणों में जब तक तेरा मन है, मन में संकल्प उठते रहेंगे, निर्गुण मन में संकल्प नहीं उठते। उस निर्गुण जो चीज मेरे शरीर में मौजूद है, उसी का नाम नाद है, उसी का नाम शब्द है, उसी का नाम कुंडलनी है, उसी का नाम ईश्वर है। मेरी देह में वो ईश्वर मौजूद है, मेरे रोम रोम में मौजूद है। रोम रोम में रमत स्वामी, राम नाम भज अंतर्यामी, वाणी कह रही है। तेरे रोम रोम में वो ईश्वर रमा हुआ है, उसका तू अनुभव कर सकता है। तो अनुभव करने का रास्ता क्या है? गुरु आज्ञा पालन करके गुरु मंत्र का जब जाप करता है तो गुरु मंत्र खुद ईश्वर है। वो जिसको हम कुंडलनी कह रहे हैं, जिसको नाद कह रहे हैं, जिसको शब्द कह रहे हैं, उसी को ही तो ईश्वर कहते हैं। और ईश्वर क्या होता है? वो ईश्वर है, लेकिन उसका अनुभव कैसे होगा? जब उस अंतर्यामी प्रभु ने, अंतर्यामी ईश्वर ने मंत्र रूप में अवतार लिया है, तो मैं उस अवतार का संग कर सकता हूं। वो अवतार का संग करूंगा तो प्रभु जानते हैं कि ये अब ये मेरे परायण है, मेरे लिए जी रहा है। तब वो अपने उस रूप को आपके अनुभव में ले आते हैं, जिसको कुंडलनी या नाद कहते हैं। तो मंत्र पर जब मैंने विश्वास किया, जो गुरु रूप में अवतार लेकर संसार में आया, उस गुरु पर मैंने विश्वास किया, तब मेरे अंदर जाने के रास्ते प्रभु खुद खोल देते। मैंने मात्र उनकी आज्ञा पालन करनी होती है, एक लक्ष्य लेके चलना होता है, मैंने इस विकारी जीवन से बचना है। जब संसार में विकारी जीवन है, विकार से मुक्त जीवन है ही नहीं, तो मैंने विकार को अपना कर अपना स्वभाव का पतन करना है क्या? तो मैं होश में रहता हूं और कर्म के प्रति जो लगन है उससे छुटकारा प्राप्त करने की कोशिश करता हूं, और उस कर्म में जो समय लग खर्च करता था उसको मैं ईश्वर सिमरन में खर्च करने की कोशिश करता हूं। तो मेरी दुर्गति नहीं होती है। मन बाहर जाए तो दुर्गति है, मन यदि अंदर जाने को तैयार हो जाए तेरी सदगति है। तो मैं सदगति की ओर बढ़ता हूं धीरे धीरे करके। तो क्या होता है कि तत्व विकार कर्म प्रगटाए, कर्म का भुगता आप बन जाए। तो फिर क्या होता है कि कर्ता भाव अभिमान को धारी स्वतंत्र रूप की हो देखा। तो मैं जो कर्म में फंसकर इसको संसार में लक्ष्य बनाकर जो मैं जीवन जीता हूं, तो क्यों जीता हूं कि मेरे अंदर एक कर्ता भाव है, अभिमान है कि मैं देह हूं और देह करके जो कुछ भी कर्म हो रहे हैं देह के द्वारा उसका मैं कर्ता। लेकिन ये जीव के लिए भ्रम है, याद है। इसलिए वो कह रहे थे कि दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई लखाई अपना भिन्न स्वरूप दिखलाई, दर्पण नाश नहीं दूजा भासे एह विद रचया जगत तमश। तो कर्ता रूप दर्पण मेरा जब टूटता है, कर्तापन जब झूठा था, तब मुझको अंतर्यामी ईश्वर दिखाई पड़ता है जो मेरा निज स्वरूप है। उस हालत में मैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाता हूं, वहां पता लगता है मुझको इस बात का कि जैसे गहरी नींद में जब स्वप्न दिखाई नहीं पड़ रहा कितनी शांति थी, लेकिन उस शांति का मैं वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन साधना के बाद जब मेरी समाधि लगती है, उस स्थिति में पहुंचता हूं जहां कर्तापन नहीं है, वहां का बोध मुझको होता है, वहां का होश मुझको होता है, वहां से जब नीचे आता हूं तो मैं उसका वर्णन कर सकता हूं, उस अनुभव को जानता हूं। इसीलिए मेरी एक इच्छा होती है कि मैं हमेशा समाधि में ही रहूं, संसार में मुझे ना आना पड़े। अभी वाणी करिए, योगी रोए समाधि को छोड़े प्रभु का हुक्म विसारे। संसार में उसका मन नहीं लगता, लेकिन बाद में इससे भी ऊपर जाता है वो, निर्विकल समाधि से भी ऊपर जाता है, जिसको सहज समाधि कहते हैं, जो महाराज जी को जलमाला में प्राप्त हुई थी, जब उन्होंने खुद कहा था प्रेमी जिसकी 14 वर्ष से इनको प्रतीक्षा थी, आज वो चीज इनको प्राप्त हुई है। उस दिन से वो गुरु बनने के अधिकारी बने। अब वो ब्रह्म है, अब वो ब्रह्मा नहीं है। इसीलिए मेरे क्या चीज है, क्या खजाना है, मैं केवल बाहर के कर्मों के झंझट में फंसकर, और इस साइंस को मेरी विज्ञान, मेरा विज्ञान है, प्रभु ने वाणी के रूप में मेरे लिए भेजा है, मैं इसको समझने के लिए कोशिश भी नहीं करता। हिंदी जानता हूं, हिंदी का स्टूडेंट हूं मैं, हिंदी मेरी मातृभाषा है, अंग्रेजी सीख लेता हूं, इसको कहता हूं ये वाणी कठिन। तेरे अंदर यदि जिज्ञासा हो, तेरे अंदर समझने की इच्छा हो, तो प्रभु तेरे लिए व्यवस्था कर देंगे। प्रभु अंतर्यामी, लेकिन तेरे अंदर वो गहरी इच्छा ही नहीं है, वाणी बड़ी कठिन है, समझ नहीं आती, खेल खत्म हो गया। कोई हिंदी का स्टूडेंट अंग्रेजी किताब दे दो, समझ आ जाएगी क्या उसे? 2-4 साल 10 साल सीखने में लगते हैं, सीख लेता है। इसी तरह से जब मेरे अंदर जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है कि मैंने अपने कल्याण की सोचना है, मनुष्य जन्म मैंने ऐसे व्यतीत नहीं करना नकल करके लोगों को, इसलिए मैंने गुरु धारण किया है, गुरु मेरा मालिक है, वो ब्रह्म है, मेरा ईश्वर है, वो अंतर्यामी है। सदगुरु तो अंतर में पल पल करे पुकार, वो तुझको पुकार रहा है, लेकिन तू अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो मैंने यदि गुरु की बात मानकर संसार में संयम बरता, उसको महाजी साध्वी कहते हैं, और अंतर्यामी प्रभु की मंत्र के द्वारा याद की, उसकी भक्ति की, तो मेरे सारे रास्ते खुल जाते हैं, और ये कर्तापन रूपी जो भूत मेरे ऊपर सवार है, ये उतर जाता है और ईश्वर के साथ में एक हो जाता है। ओ धन्य।